उनको पकड़ करके खींच रहे हैं, वो उनको पैकर ताली बजा रहे हैं, इधर में बज रही है चुकचुकी बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, जिसके अंदर में रक्त नहीं उसके अंदर में भी रक्त और जोश आ जाए, खूब जोर से चलने लगा, कभी वो उसको खींचता है, कभी वो रक्त मारता है, कभी वो और पैंतरा भाज रहे हैं। जिस समय कृष्ण को चारू और मुस्तिक मारता है बलदेव जी को खुशी से, और प्राण लेने पर आया, दंगल का जो नियम है वो तो रख दिया इधर, और बेईमानी चलने लगा बच्चे को मारने की। उस समय जब वो मुस्तिक आभास करता है तो कृष्ण को कैसे लगता है, मानो कि एक विशाल हाथी को कोई कोमल हाथ से कुछ मारता है, वो हाथी को चोट पहुंची, एक गुलाब के फूल से या कमल के फूल से एक हाथी के ऊपर आप बड़े जोर से मारिए, उसको क्या लगेगा, कुछ नहीं। आज कृष्ण को बिर रस साधन हो रहा, कृष्ण को बड़ा अच्छा रहा था, वो भी ताल को कटा फील रहे हैं, बड़ा आनंद रहा है कृष्ण को बलदेव। ये जो कृष्ण को जो आनंद लग रहा है उसमें बतला अनुकूल कृष्ण सुलेनम, अर्थात कृष्ण को अच्छा लगे उसको कहते हैं भक्ति। तो कृष्ण को तो आज बड़ा आनंद हो रहा है, इसलिए इसको भी भक्ति कह दीजिए। भक्ति होगी कि नहीं होगी, कृष्ण का इस समय आनंद जो लग रहा है ये भक्ति नहीं होगी। क्यों? प्रतिकूल भाव युक्त ये है, उसकी इच्छा कृष्ण को आनंद देना नहीं है, उसकी इच्छा क्या है, कृष्ण को मार करके आज खत्म कर रही है, इसलिए उसके अंदर की इस वृत्ति के वजह से ये प्रतिकूल भाव है, इसलिए अनुकूल है अनुकूल लेना, अर्थात कृष्ण के रुचि के अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल भाव ने अर्थात कृष्ण को मार डालेंगे ऐसा भाव, ये प्रतिकूल भाव है इसलिए भक्ति नहीं होगी। कृष्ण को भले ही अच्छा लगे, इसे सब कुछ कृष्ण के अच्छे लगने पर ही नहीं है, अपने मन की वृत्ति भी रहनी चाहिए जो कृष्ण के अनुकूल ही सेवा करें। इसलिए ये अर्थ हुआ अनुकूल माने अनु निरंतर, अनु माने वैष्णव के अनुगत, कृष्ण को अच्छा लगे किंतु उसके प्रतिकूल भी नहीं हो। शीलन अनुशीलन, अनुशीलन ही भक्ति है, किंतु उसके दो जो पहले बतलाया अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनाभिल, ये दो चीज नहीं दूर हो, अनुशीलन भी करता रहेगा और अनुकूल नहीं हो तो उत्तम भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो होगी कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा संग सिद्धा आरोप सिद्धा, ये हो जाएगी ने? और उसके द्वारा आप संसारिक सुख जितने हैं सब आपको मिल जाएगा, जो कुछ चाहेंगे उसके द्वारा सब कुछ हो जाएगा, धन जन पुत्र परिवार संपत्ति यहाँ पक्षी स्वर्ग इत्यादि जो कुछ चाहेंगे, विभूतियां आठ सिद्धियां नौ प्रकार की निधियां, ये सभी सभी कुछ किसी को वशीकरण कर लेंगे, किसी को चाहेंगे तो मार भी सकते हैं, किसी को चाहे तो रुपया नोट हजार हजार ऐसे निकाल करके झटझट करके देखने लग जाए, ये सब कुछ हो जाएगा भाई, किंतु प्रेम नहीं होगा उसके लिए उत्तम भक्ति। इसलिए अनुशीलन में भी अनु और शीलन, शील माने क्या, यह संस्कृत शब्द है शील, शील माने क्रिया करना, हमको हमारी जो तीन प्रकार की चेष्टाएं कायिक चेष्टा था, तो इसमें ग्यारह इंद्रियां हमारी हैं, पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय और मन, इन सबके द्वारा ही भगवान के अनुशीलन में लगना पड़ेगा। इसलिए चेष्टाएं होती हैं, काय की चेष्टाएं, मंदिर मार्जन करना, फूल ले आना, हार गूंथना, कृष्ण के लिए भोजन बनाना, कृष्ण के लिए भोजन अर्पण करना, उनकी आरती उतारना, इत्यादि तो सब प्रकार की जो भक्तियां हैं उनमें ही अपने इन काय की बाकी की और मानसिक चेष्टाओं को करने के लिए। ये चेष्टाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है क्रियात्मक रूप में, एक होता है भावात्मक रूप में, एक तो करते हैं एक नहीं करना चाहिए इसमें भी आता है। जैसे आपने भाव समर्पण किए कृष्ण को, जब मैं एक गोपी के रूप में गोपियों की दासी बनकर के कृष्ण की सेवा करता हूं, ये कैसी चेष्टा हुई, न बाकी की न मानसिक, क्या हुई, ये आत्मिक चेष्टा है, ये भाव, ये भावात्मक रूप में होना चाहिए और क्रियात्मक दोनों रूप में होना चाहिए। क्रियात्मक में कुछ निषेध की गई है, क्या, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य मत करो, मन में क्रोध में जीवा में उदर में उपस्थ में को दूर रखो, कुसंग मत करो, अत्याहार अधिक मत खाओ, अधिक मत सो, गुरुजनों का संग मत करो, जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं उनका संग मत करो, जो बीचों में फंसे हुए हैं। अपिचेतु दुराचारो भजते माम आनंद भाग, भगवान का भजन करते हैं किंतु दुराचार भी उनके साथ में है, उनको बंद करना, इनका भी अनुशीलन करना चाहिए। बल्कि इस समय में साधन अवस्था में हमें कृष्ण की सेवा, कृष्ण की कथा की अपेक्षा, कृष्ण के भगवत भक्तों का नाम और उनके लीला चरित्रों को पढ़ना और सुनना अत्यंत आवश्यक है। भागवत में प्रारंभ कहां से किया? नारद जी ने अपना चरित्र और भक्ति की बातें व्यक्ति को की। व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को अपना जीवन चरित्र बतलाया, उसी प्रकार से गुरु जी अपना जीवन चरित्र, भक्तों का जीवन चरित्र बतलाएंगे, उसके अनुसार में हमको चलना चाहिए। कृष्ण का अनुशीलन करने से कुछ गड़बड़ हो सकता है, कृष्ण के उपदेशों को हम नहीं भी समझ सकते हैं, उनके चरित्र को। कृष्ण ने राग किया, हम भी राग करेंगे। लड़कियों को कपड़े हटा करके दर्शन किया, हम भी करेंगे। कृष्ण ने तो सब कुछ खाया, हम भी करेंगे। कृष्ण तो सांप पर चढ़ करके काली के ऊपर में नृत्य किया, हम भी करेंगे। बीज खाया, आग खाया, हम भी करेंगे। ये सब नहीं, भक्तों का चरित्र, उसमें भी उत्तम भक्तों का नहीं, मध्यम भक्त के, जिनका हम चरित्र और विचार समझ सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। इन गुरु मध्यम अधिकारी उन्हीं के विचारों को लेकर के अधिक चलने से हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए राधा नाम करते हैं हम, किस लिए? कृष्ण प्रसन्न हो। और कृष्ण नाम किस लिए करते हैं? राधा जी प्रसन्न हो। हरे कृष्ण, हरे माने राधिके, कृष्ण के विचित्र को हरण करने वाली राधिका का नाम हरा है, संबोधन में हो गया हरे। इसलिए हरे कृष्ण राधा कृष्ण, हरे कृष्ण हरे इसलिए करते हैं कृष्ण को आनंद हो, और कृष्ण किस लिए करते हैं? राधिका जी हम प्रसन्न होंगे, हमें सुख होगा, इसके लिए भाई हरि नाम मत करो, हम मुक्त हो जाएंगे, सुख नहीं होगा, मत करो। जब तक गुरु पदाश्रय नहीं किया था, आश्रम में नहीं आए थे, तब तक के लिए इससे कोई भी काम करो, इसमें विचार करो कि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, हमारे गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे कि नहीं, तब तो वो ठीक है, तब उस काम को करो, अन्यथा उस काम को कभी खबरदार मत करो अपने सुख के लिए। ये सब विचार लेकर के अब इसमें एक विचार और दो, अन्याभिलाष न कह करके अन्याभिलाषिता क्यों कहा गया? अन्याभिलाष माने क्या अर्थ है और अन्याभिलाषिता का अर्थ क्या है? देव और देवत्व, देव माने क्या? जैसे इंद्र देव है, कृष्ण देव है, ये राम इत्यादि देव है, और देवत्व माने क्या होता है? देवताओं का गुण, हरि और हरित, साक्षात हरि सेन, और साक्षात हरि में अंतर है, साक्षात हरि कृष्ण है, और हरित्व माने कृष्ण के जो गुण है जिनमें है वो गुण उनके सेवक है। इसलिए दोनों को एक मत कर देना। इसलिए यहाँ पर जो अन्नाभिलाष और यहाँ पर है अन्नाभिलाषिता, दोनों में अंतर है। अन्नाभिलाष कहते हैं कोई भी इच्छा, कोई भी कामना जो कृष्ण की सेवा से अतिरिक्त है। जैसे कोई एक व्यक्ति आया और आकर के हमें प्राण से मारने लग गया, जबरदस्ती बस इस थप्पड़ जवा दिया, कहीं तुम्हें मार डालूंगा और मारने लग गया। अब उस समय वो कहता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। अभी जो रक्षा करना जो कहा कृष्ण से, ये अन्याभिलाष है कि नहीं है? आप लोग विचार कीजिए, इसमें कृष्ण की क्षमा करूंगा ये भाव है उस समय? हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें, यह जो प्रार्थना है यह तो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त एक हुई। अब इसमें यह विचार करते हैं, इसको कहते हैं अन्याभिलाष। अन्याभिलाषिता का अर्थ है उसके रग रग में, किसी भी सब अवस्थाओं में जो अभिलाषा होता है उसको अभिलाषत्व कहते हैं, अभिलाषा अभिलाषिता। जैसे जिस समय में कृष्ण कोई एक व्यक्ति उसे मार रहा है और उस समय कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। जैसे द्रौपदी जी के ऊपर में संकट पड़ा और कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं था, उस समय में द्रौपदी जी ने पतियों के तरफ में देखा, भीष्म द्रोण की तरफ में देखा, किसी ने उनकी रक्षा नहीं। सब वो कृष्ण को बुलाने, हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन है, अब तो लज्जा हमारी गई, किंतु कृष्ण नहीं आए। मुख में दांत के तले उसका भी अंचल लगा हुआ था, अभी अपनी चेष्टा कर रही है इसलिए कृष्ण नहीं आ रहे। जिस समय हाँ कृष्ण कहा, दोनों हाथ उठा दिए ऊपर और अपने लिए कोई भी चेष्टा नहीं की, अब संपूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर में दे दिया शरणागत हो गई, इसको कहते हैं शरणागत। लज्जा रहे और न रहे पर चित्त कृष्ण में लगाया। उस समय कृष्ण दूर तो थोड़े थे पर झट आ गए, और झट आकर के कपड़े इतने बने कि कृष्ण कपड़े बन गए कि कपड़ा ही कृष्ण बन गया। लाखों गज कपड़े निकलते निकलते दुर्शासन की 10,000 हो जाए, जो 10,000 हाथियों का बल वो सब समाप्त हो गया, पसीने से चूर हो गया और कपड़े बने। ये जो द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की, ये मेरी कपड़े को हमारी लाज बचाइए, अब ये लाज बचाना कृष्ण की सेवा के लिए है, ये तो दूसरी अभिलाषा जान पड़ती है। किंतु यही वो स्पष्ट हुई, अरे हाय हाय, अपने ये सुस्त शरीर के लिए, मट्टी के लिए, जो आज न कल नंगा होना ही है और जला दिया जाएगा, उसकी रक्षा के लिए हमने कृष्ण को बुलाया, बड़ी ग्लानी और साफ हुआ। अरे नहीं नहीं, ऐसा प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं अन्याभिलास। ये दूर हो जाना, ये दूर न रहे और रहे कोई बात नहीं, अर्थात अंदर में वो भावना नहीं रहनी चाहिए। किसी अस्वस्थ अवस्था में, किसी दुर्घट अवस्था में पढ़ करके जो प्रार्थना कर दी जाए वो भक्ति का विरोधी नहीं है, किंतु स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए यदि आप करते हैं, ये अभिलाषिता का जो गुण है ये नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक स्थिति में भगवान से कुछ इसकी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, रुपये का अभाव हो गया, ठाकुर जी का सुंदर अलंकार वस्त्र और भोजन नहीं मैं दे सकता, प्रभु आप कृपा कीजिए कुछ दीजिए तो जो आपकी सेवा कर सकूं। थोड़ी देर के बाद में आया, अरे प्रभु अभी अपनी चेष्टा कर रही है इसलिए कृष्ण नहीं आ रहे। जिस समय हाँ कृष्ण कहा, दोनों हाथ उठा दिए ऊपर और अपने लिए कोई भी चेष्टा नहीं की, अब संपूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर में दे दिया शरणागत हो, इसको कहते हैं शरणागत। लज्जा रहे और न रहे पर चित्त कृष्ण में लगाया। उस समय कृष्ण दूर तो थोड़े थे पर झट आ गए, और झट आकर के कपड़े इतने बने कि कृष्ण कपड़े बन गए कि कपड़ा ही कृष्ण बन गया। लाखों गज कपड़े निकलते निकलते दुर्शासन की 10,000 हो जाए, जो 10,000 हाथियों का बल वो सब समाप्त हो गया, पसीने से चूर हो गया और कपड़े बने। ये जो द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की, जो मेरी कपड़े को हमारी लाज बचाइए, अब ये लाज बचाना कृष्ण की सेवा के लिए है, ये तो दूसरी अभिलाषा जान पड़ती है। किंतु यही वो स्पष्ट हुई, अरे हाय हाय, अपने ये सुस्त शरीर के लिए, मट्टी के लिए, जो आज न कल नंगा होना ही है और जला दिया जाएगा, उसकी रक्षा के लिए हमने कृष्ण को बुलाया, बड़ी ग्लानी और साफ हुआ। अरे नहीं नहीं, ऐसा प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं अन्याभिलास। ये दूर हो जाना, ये दूर न रहे और रहे कोई बात नहीं, अर्थात अंदर में वो भावना नहीं रहनी चाहिए। किसी अस्वस्थ अवस्था में, किसी दुर्घट अवस्था में पढ़ करके जो प्रार्थना कर दी जाए वो भक्ति का विरोधी नहीं है, किंतु स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए यदि आप करते हैं, ये अभिलाषिता का जो गुण है ये नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक स्थिति में भगवान से कोई चीज की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, रुपये का अभाव हो गया, ठाकुर जी का सुंदर अलंकार वस्त्र और भोजन नहीं मैं दे सकता, प्रभु आप कृपा कीजिए कुछ दीजिए तो जो आपकी सेवा कर सकूं। थोड़ी देर के बाद में आया, अरे प्रभु, अरे प्रभु का सर्वस्व और उनको हम बुला रहे हैं, उनको इन चीज की कमी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा जो राधा कुंड को मैं बना दूं अच्छी तरह से, फिर कारण अरे मैं बनाने वाला, ये तो चिंतामणि से बना हुआ है, स्वीकार करने लगे। इसलिए किसी किसी समय में, आपत समय में जो भगवान से प्रार्थना इत्यादि की जाती है, आपत की स्थिति में वो सब अन्याभिलाष नहीं है। किंतु स्वाभाविक स्थिति में भी जब हम हैं, कहते प्रभु हमको धन दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, रुपया दीजिए, संपत्ति दीजिए, ये दीजिए, मैं ऐसा पुत्र दीजिए, मैं ऐसा पत्नी बन जाऊं भाषण देने वाला जो विश्व ब्रह्मांड को थर मरा दूं, सब लोग हमारे बात को सुन करके हमारे चरणों में झुक जाए, तो ये तो हो गई भाई उल्टी बात। इसलिए स्वाभाविक स्थिति में अन्नाभिलाष नहीं होना चाहिए, यह अन्नाभिलाषी का काम अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें अन्नाभिलाष नहीं होना चाहिए, अभिलाष कभी हो जाए और थोड़ी देर के बाद में उसके प्रति धिक्कार आने लगे, यह तो हो सकता है, इसलिए अन्नाभिलाषी का काम नहीं है। और एक इसमें बात है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म के बिना हमारा चल सकता है कि नहीं, कोई कर्म नहीं करेंगे भक्ति हो सकती है कि नहीं, नहीं होगी। भाई एक आदमी है वो श्वास तो लेगा ही नहीं तो मर जाएगा, भक्ति भजन क्या करेगा, भोजन कुछ करेगा कि नहीं, तो ये कर्म है, जो कुछ भी करते हैं वो तो कर्म है फल की इच्छा से, तो बिना कर्म किए एक सेकंड भी नहीं रह सकते। गीता का भी यही उपदेश है, जो कहता है कि मैं कर्म नहीं करता वो मिथ्याचारी, तो कुछ वो मिथ्याचारी है, बिना किए हुए रहने सो रहे हैं ये भी कर्म है, सांस ले रहे हैं भी कर्म, खा रहे हैं वो भी कर्म, चल रहे हैं वो भी कर्म, सब कुछ कर्म है। किंतु भाई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जो भक्ति को ठक दे, कर्म बिना नहीं चलेगा, उसमें कृष्ण की भावना लगा करके उसको अनुकूल कर करके उसको कीजिए, तब तो ये ठीक है। और नहीं तो जो कर्म जैसे यज्ञ करने लगे और स्वाहा स्वाहा करने लगे, किस लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं जैसे इसे वातावरण शुद्ध होकर के बरसा हो, इससे और बातें हो, हम सुखी रहेंगे, देश में अन्न फसल इत्यादि हो, और उसके बाद में हम भगवान को अर्पण करेंगे, नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। शुद्धा भक्ति होनी चाहिए, उसके द्वारा कर्म से ठक न जाए। कोई कोई लोग ज्योतिष विद्या सीखते हैं, किस लिए क्या जरूरत पड़ी है, लोग आएंगे कहेंगे तुमको पुत्र होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो उसके लिए व्यवस्था कर देंगे, सबीज दे देंगे, नृसिंह मंत्र दे देंगे, ये सब खबरदार मत करो, इसके द्वारा भक्ति ढक जाएगी। इसलिए उतना ही करो जो भक्ति के अनुकूल करके कर्म के द्वारा हम भक्ति को और विकसित कर सकते हैं, वो ऐसा कर्म होना चाहिए। जैसे हम हरिनाम कर रहे हैं भी कर्म है, जीवा से चला रहे हैं तो ये कर्म है, किंतु ये भगवत भक्ति है, ये भगवान के लिए हो रही है, इसी पर जीवा के ऊपर मैं स्फूर्ति हूं। और अन्नाभिलाष ज्ञान कर्म, ज्ञान भी यदि अपने मुक्ति के लिए कर रहे हैं और संसार ये कुछ नहीं है, बेकार का है, इससे हमारा कोई भी तात्पर्य नहीं है, न इति कर रहे हैं, ये भक्ति का ठक देगा, ये मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा ये भक्ति को ठक देगा। इसलिए ऐसे ज्ञान कर्म जो अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा दर्शन और उसे जुड़ने समाधि में मिलना, परमात्मा बन जाना, ये सब चीजें भक्ति का अवरोधक है, उसे भक्ति को ठक देता है। इसे भक्ति के अनुकूल कर्म और ज्ञान को ग्रहण किया जाएगा। आदि शब्द से आलस्य भी नहीं होना चाहिए। एक बात और भी इसमें है, सुख बात क्या, एक आदमी शुद्ध भक्ति करना चाहता है किंतु लोक संग्रह करने के लिए कुछ ऐसा कर्म ऊपर से कर देता है जो भक्ति का विरोधी जैसा लगता है, तो उसको भी भक्ति का विरोधी मत समझ। जैसे एक गुरु आचार्य है, हम लोग वैष्णव में भी श्राद्ध होता है, आप लोग जानते होंगे, वैष्णव को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये नियम है, क्योंकि जो हरिनाम कर लेता है उसका अपने आप कभी श्राद्ध हो गया, उसको श्राद्ध करने की कोटि कोटि पिंड देना और पितृपुरुषों को श्राद्ध करना हो जाता है, इसलिए वैष्णव लोग श्राद्ध नहीं, जो हरिनाम करने है उसका श्राद्ध क्या, श्राद्ध तो उसके लिए होता है जो नरक में गए हैं, जिनकी कोई गति नहीं उनके लिए श्राद्ध दिया जाता है, पिंड दिया जाता है। अरे भाई तो जो हरिनाम किया उसके 33 कितने 21 पीढ़ी के 14 पीढ़ी के और 7 पीढ़ी के लोगों का उद्धार हो गया, उसके लिए पिंड अब देने की क्या जरूरत है। किंतु लोग कहेंगे अरे इसने कोई श्राद्ध नहीं किया, इसके पिताजी मर गए वैष्णव थे तो क्या हुआ, तो इसलिए उनके लिए यदि करते ही और उसमें भगवान को प्रसाद निवेदन करके बस वही उनको निवेदन कर देते हैं उस आत्मा के लिए, तो उस आत्मा का भी कल्याण हो जाता है और इसमें भक्ति का विरोधी भी नहीं हुआ। इसलिए ये सब विचार करके पूरा सब भगवान की भक्ति जो की जाती है तो उसको कहते हैं उत्तम भक्ति। कितना बच गया, बस अब प्रश्न करनी छोड़ दीजिए। तो इसलिए भाई उत्तम भक्ति को समझकर और तब इस पर विचार करके वैष्णव के अनुगत्य में
निरंतर्य उसमें लगाकर कृष्ण के लिए रोचमाना हो किंतु प्रतिकूल नहीं हो, ज्ञान कर्म को योग तपस्या को भक्ति करेंगे किंतु भक्ति के अनुकूल उन कर्मों को और ज्ञान को भी करेंगे, जो भी लगा सकते हैं कृष्ण के लिए चिंतन करना और दूसरे प्रकार की अभिलाषा न रहे, समझो कि हमारी भक्ति अब क्रमशः मध्यम से उत्तम की तरफ में चल रही है। जीवन कुछ दिनों में ही सार्थक होने वाला है, हमारे अंदर में भाव प्रकटित होगा जो लादनी शक्ति की वृद्धि है और तब फिर प्रेम होने की गुंजाइश है। और जो इस पर विचार नहीं करके भक्ति को करता है कुछ दिनों में उसका चित्त और हट जाता है और अंत में भक्ति से वंचित हो जाता है। आज ही अपना वक्तव्य कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो इसके संबंध में तो आप पूछ सकते हैं, अन्य तो कीर्तन करके हम लोग बंद करेंगे।
आपने कहा कि राधा जी की सेवा करने से भगवान से खुश होते हैं, लेकिन क्या राधा जी खुश होंगे?
हाँ, वो देखेंगे कि कृष्ण खुश हो रहे हैं बस सब खुश हो गए। मान लें कि कोई हमारे गुरु भाई हैं, वो अस्वस्थ हो गए, जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं इसलिए गुरु जी प्रसन्न हो, गुरु जी ने देखा जैसे हमारे प्रिय भक्तों की ये सेवा कर रहा है तो बस गुरु जी प्रसन्न हो गया, ठीक वैसे ही राधा जी की प्रसन्नता से कृष्ण, कृष्ण की प्रसन्नता से राधा जी। वो जैसा विधि है वो विधि पालन करना पड़ेगा, कृष्ण को निवेदन करना पड़ेगा और राधा जी को ध्यान करना पड़ेगा, गुरु जी को ध्यान करना पड़ेगा। और जिस समय वो राधा कृष्ण को खिला रहे हैं गुरु जी अपने इस फॉर्म में नहीं रहेंगे पुरुष रूप में, उनको मंजरी के रूप में सखी के रूप में वहाँ पर जाना पड़ेगा, राधा कृष्ण की सेवा में दूसरा कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। इस वैसी भावना करके राधा जी ने रसोई बनाई, राधा जी कृष्ण को आरोगन भोजन करा रही हैं और गुरु जी हमारे सखी के रूप में उनको ये सब पानी और ये भोजन थाल और सब उनको सामने रख रहे हैं और राधा जी प्रेम से चलते हुए उनको खिला रही हैं। ऐसी सब भावनाएं करना पड़ता है, यही सब भावनाएं भक्ति के अनुकूल हैं। और यदि भक्ति के अनुकूल में हमने गुरु जी को कह दिया जैसे तत् नैवेद्यम एं गुरवे नमः कर दिया तो गुरु जी प्रसाद पाएंगे, कहिए ले जाओ हटाओ हमको जरूरत नहीं है, इसलिए गुरु जी को दिया जाएगा इसलिए कि वो राधा कृष्ण को भोग लगाएं, उनको बैठा करके खिलाएं और फिर उनका प्रसाद जो होगा धनिष्ठा जी ले आएंगी और ले करके राधा जी को देंगी, राधा जी अपनी सब सहेलियों को बांट करके उसमें अपने गुरु जी भी हैं और सब फिर अपने खाएं। ऐसा नहीं जो कृष्ण भी बैठ गए खाने के लिए और राधा जी बैठ गए, यार और दोस्त जैसे, अरे यार तुम भी खाओ हम भी खाएं, ऐसा नहीं। वो यार जगतिक यार और दोस्त ये सब चीजें वहां पर नहीं चलेगा, वहां पर जैसे हमारे परंपरा के नियम है उस नियम से चलना पड़ेगा। आजकल तो ऐसा ही चले गए समुद्र के किनारे, पिकनिक इत्यादि क्या होने लग गई और दोनों यार बैठ गए बस, अरे भाई बस चलने लगे, इसलिए ऐसा नहीं, विधि विधान के अनुसार में हमको चलना चाहिए। उत्तम पुरुषों के लिए ये, उत्तम भागवतों के लिए ये विधि विधान नहीं, वो किसी का अंकुश शास्त्र का अंकुश के ऊपर नहीं चलता है। वो समझते हैं कि सब कुछ कृष्ण का भोग है, सबका प्रसाद है, वो जहां तहां उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, उनमें कोई विवाद नहीं। यार बोलिए प्रथम बार मिले थे गोलोक वृंदावन में, वहीं से उनका मिलन हुआ। गोलोक वृंदावन में भी हस्तिनापुर है और वहां पर द्वारकापुरी है, उस द्वारकापुरी में ही दोनों का मिलन हुआ। जब लीला करने के लिए आते हैं तो इस जगत में तब कृष्ण मथुरा में और अर्जुन हस्तिनापुर में जन्म लेते हैं और जन्म के समय में ही दो चार पांच वर्षों के बाद ही में दोनों का मिलन हुआ। कुंती जी कृष्ण की बुआ थी, इसलिए जब कृष्ण अर्जुन पैदा हुए तो कृष्ण अपनी बुआ जी के पास में अपने भाई का से भेंट करने के लिए गए, उनको ले गए देवकी और वसुदेव जी, कृष्ण को गोदी में लेकर वहां पर ले गए थे उनको दर्शन कराने के, इसलिए वहीं पर उनकी भेंट हुई। और गोलोक वृंदावन में द्वारका में तो नित्य आपसे और हमसे अभी कृष्ण का भेंट नहीं हुआ, किंतु भेंट हुआ ये समझिए। हम लोग यहाँ कराने वाले नहीं है, ये शरीर हम लोग नहीं है, हम लोग वो लोग वैकुंठ धाम कराने वाले हैं, जो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रदान, इसलिए बैक टू गॉड एंड बैक टू होम हमको चलना पड़ेगा। कृष्ण से हमारा नित्य संबंध है, हम उनको भी छोड़ करके आए यही हमारी गलती है, इसलिए उनका नित्य ही संग है। हम जो संग देखते हैं वो भूल से देखते हैं कि उस समय उनका कब पहला संग हुआ, किंतु उन लोगों का सब समय संग ही संग है। राधा जी से कृष्ण का कभी भी छोड़ नहीं होता। वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, वृंदावन से कृष्ण कभी एक पैर भी नहीं जाते, इसलिए राधा जी से उनका कभी भी विरह नहीं है। किंतु इस लीला में ऐसा दिखता है कि उनका विरह है, तो ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, जिसके लिए ये सत्य है किसी के लिए वो सत्य है, किसी के लिए दोनों सत्य है, अपने अपने अधिकार पर यह सब निर्भर करता है।
राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
तबे नाना लता
গৃহেতে মাগিয়া খাইব বিবসার সতি জল বিবসার সতি জল তপত গৃহেতে মাগিয়া খাইব বিবসার সতি জল বিবসার সতি জল ফুলিলে ফুলিলে গড়া গড়ি দিব করি কৃষ্ণ কোলাহল ফুলিলে ফুলিলে গড়া গড়ি দিব করি কৃষ্ণ কোলাহল ধামবাসী জানে প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার লে মাগিব কৃপার লে তবে ধামবাসী জানে প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার লে মাগিব কৃপার লে বৈষ্ণব চরণ রেণু গায়ে মাখি ধরিয়াব তবে তবে বৈষ্ণব চরণ রেণু গায়ে মাখি ধরিয়াব তবে সদা ধরি আব তবে ধরি বৈষ্ণব চরণ রেণু গায়ে মাটি ধরি অব তবে বৈষ্ণব চরণ রেণু গায়ে মাটি ধরি তবে গৌরবনে হেদে না হেরিব কইব বর জবাতি কইব বর জবাতি হেদে না হেরিব কইব
Hare Hare